ओम शांति। हमारा सौभाग्य है कि शांति वन की इस पावन भूमि पर हम नित्य नई क्लासेस सुन रहे हैं और हमारे वरिष्ठ दीदियां और भाई अपने अनुभवी वक्तव्यों से हमको बहुत ऊर्जावान शक्तिवान बना रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय रामनाथ भाई जी। हम एक हाथ की ताली से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक बहुत ही शक्तिशाली विषय पर आप हमें क्लास कराएंगे। आपका संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। आपका जन्म 1964 में दिल्ली के एक शिक्षित धार्मिक परिवार में हुआ। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से 1983 में बीएससी ऑनर्स की शिक्षा प्राप्त की तथा बचपन से ही आपकी रुचि आध्यात्मिक जीवन की ओर रही। 1972 में आपने ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में जब आए तो आपने अपना जीवन सारा ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित कर दिया। आपने देश विदेश में हजारों आध्यात्मिक प्रवचनों और ध्यान सत्रों के माध्यम से लोगों को आध्यात्मिकता की राह पर प्रेरित किया है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, यूके, पेरिस, दक्षिण अफ्रीका सहित अनेक देशों में आपने आध्यात्मिक ज्ञान, बाबा का संदेश जन जन तक पहुंचाने की सेवा की है और भारत के लगभग सभी राज्यों में आपने सेवाएं दी हैं। आप राष्ट्रीय और राज्य स्तर के अनेक धार्मिक जो भी सम्मेलन हुए उसमें मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किए गए। विभिन्न धार्मिक नेताओं और प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों के साथ आपका बहुत अच्छा गहरा आध्यात्मिक संवाद भी रहा और इस तरह से बाबा की सेवाओं को चारों ओर विशेषतः धार्मिक विंग की तरफ से आपने बहुत सेवाएं की हैं और वर्तमान में आप ब्रह्मा कुमारी के धार्मिक विंग हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे हैं। तो आपका हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और चंद लाइन आपके लिए कहना चाहूंगी। हिम्मत अगर दिल में सच्ची हो, हिम्मत अगर दिल में सच्ची हो तो राहें खुद ब खुद आसान हो जाती हैं और जब बाप की मदद साथ हो तो असंभव भी एक कहानी बन जाती है। फिर सफलता दूर नहीं रहती और हर चुनौती सफलता की सीढ़ी बन जाती है, हर चुनौती सफलता की सीढ़ी बन जाती है। ऐसा ही आपका जीवन है और ऐसी ही प्रेरणाएं देने के लिए अपने दिव्य अनुभवों के साथ में हमें आदरणीय रामनाथ भाई जी बताने वाले हैं। हिम्मत हमारी और मदद बाप की, हिम्मत हमारी मदद बाप की, इस विषय पर आप हमें प्रेरणाएं देंगे। ओम
शांति। ओम शांति। आज का विषय है हिम्मत और मदद। तो आप पूछेंगे हिम्मत क्या है, हिम्मत कहां से आती है, हिम्मत का अर्थ क्या है। हिम्मत माना इंग्लिश में कहेंगे एक बूस्ट, नहीं तो एक लिफ्ट कहेंगे। तो एक मदद मिलती, कहां से मिलेंगी वो हिम्मत, हमारे जीवन में हिम्मत चाहिए तो हिम्मत कहां से आएंगे। तो हिम्मत आती है रोज अगर हम इस ईश्वरीय श्रीमत जो स्वयं निराकार सत्यम शिवम सुंदरम परम धाम से आकर कल्प में एक ही दफा ये दिव्य ज्ञान देता है जिससे मनुष्य आत्माएं अनेक बंधनों से, अनेक प्रकार के विकर्मों से, अनेक प्रकार से पापों से मुक्त हो सकते हैं। ये कोई किसी मनुष्य ने कहीं किधर से आया नहीं है, ये कल्प में एक ही दफा डायरेक्ट परम धाम से इस सृष्टि पर मनुष्य आत्माओं को, पतित आत्माओं को पावन बनाने के लिए ये पवित्र ज्ञान प्राप्त होता है। इस ज्ञान को अगर रोज हम सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं है, लिसनिंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग, हम बहुत कुछ सुनते हैं पढ़ते भी हैं और भूल भी जाते हैं, तो कहा ज्ञान की धारणा चाहिए। जितनी धारणा है उतना हमारी बुद्धि दिव्य होती है। अगर बुद्धि दिव्य है, समझदार बनती है, समझ आता है क्या सही क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मन चंचल है, मन के अंदर बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन बुद्धि जैसे मां बच्चों को समझाती है, इसलिए मां को गुरु कहा। वो बच्चों को समझाती है ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, सही क्या गलत क्या। तो यहां हमें कौन बताएगा मोबाइल में क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान शिव बाबा परमधाम से आके देता है, लेकिन हमको क्या करना चाहिए उसकी अगर धारणा चाहिए तो एक शब्द या दो शब्द जो हम कर सकते हैं। बहुत सारी बातें आती है, हर मुरली में चार सब्जेक्ट होते हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा। उनमें से हरेक का अपना अपना लक्ष्य है, अपने लक्ष्य के अनुसार सिर्फ दो महावाक्य ही, एक या दो अगर हम लिखना जरूरी है, और सदा नहीं, थोड़े दिन 10-15 दिन अगर आदत डालो लिखने का, तो वो लिखने के बाद अपने आप को सवेरे से रात तक बार बार पढ़ाओ। क्योंकि दुनिया में लोग कहते हैं इट इज वेरी इजी टू टीच अदर्स बट वेरी डिफिकल्ट टू टीच द सेल्फ। औरों को बताना समझाना बहुत सहज है, लेकिन अपने आप को पढ़ाना अपने आप को समझाना इसमें हमारे पास समय नहीं है। हमने उसको सेवा नहीं समझा, औरों को समझाना ही सेवा समझा है। लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं को पहले सशक्त बनाओ, पहले स्वयं को सुधारो, स्वयं को समझाओ। इसलिए कहा स्वपरिवर्तन पहला। तो उसमें से एक या दो पॉइंट, जैसे उदाहरण आज बाबा ने कहा कि देह अभिमान ही कारण है सबका, डाउनफॉल होने का कारण क्या है। इस एक पॉइंट पर अगर आप अंडरलाइन कर सवेरे से रात तक बार बार अपने को पूछते हो देह अभिमान क्या है, देह अभिमान क्या है, कोई मिला उनसे भी चर्चा करो देह अभिमान किसको कहते हैं, उसके लिए उसको निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। औरों से भी शुभ विचार मिलता है, आपको भी आपके पास भी शुभ विचार है, तो ये ज्ञान के लेन देन करना ही उसको ही नाम है ब्राह्मण। वो है शुभ भावना कहते हैं हम, किसी को देखते ही अगर बाबा के बच्चे दिखाई दिया, बैच पहना है सफेद कपड़े पहने, देखते ही आपके दिल में ये स्मृति जागृत होती है, अरे इनको आज के मुरली के पॉइंट सुनाना है। इसी को गीता में कहा नष्ट मोहा स्मृति लब्धा कहा। ये मोह माया से अगर आप मुक्त होना चाहते हो, नहीं तो एक घोर कलयुग है दुनिया के लिए। वस्तु व्यक्ति वैभव मान शान ये हरेक के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, इससे मुक्त होना इतना सहज नहीं है। तब सारे शास्त्रों ने सबने कहा चाहे लाख करो चतुराई ये लेप मिटे ना रे भाई। सिर्फ संगम पर एक ही दफा शिव बाबा ने कहा मेरा धर्म और कर्म एक ही है, पतित आत्मा को पावन बनाना है, और उसको सत्युग के गेट तक छोड़ देता हूं, मतलब योग्य बनाता हूं। तो उसके लिए ज्ञान चाहिए, तब का सत्संग से सदगति होती है। सदगति और दुर्गति दो चीजें हैं, सदगति क्या दुर्गति क्या। हम कल तक थे दुनिया में, थे संसार में थे, कल भी कल तक हमको किसी ने कुछ का गुस्सा आता था, आज हमने ज्ञान सुना, सुनने के बाद हमने लिखा कि क्रोध नहीं करना चाहिए। समझ में आया, सवेरे से रात तक अपने आप को बार बार पढ़ाया, याद दिलाया, क्रोध का कारण क्या है, क्रोध कहां से आता है, क्रोध करने से क्या होता है, नहीं करने से क्या होता है, अपने आप को समझाया। इसको कहते ज्ञान का मंथन किया। जो एक बूंद, अगर सारे दिन में कोई परिस्थिति आती है, सामने वाला कोई भी गलत विचार करता है, गलत व्यवहार करता है, क्रोध करता है, उसको कहा परिस्थिति, पेपर, समस्या, विघ्न आते हैं, नहीं आते से नहीं। लेकिन जिसके बुद्धि में ज्ञान है, तुरंत बुद्धि कहते तुम चुप रहो, सहन करो, लेट गो, छोड़ दो, उसका कर्म है, वो करने दो। कौन रोकेगा, कौन समझाएगा? तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में और दुनिया में इतनी विश्वविद्यालय है, दोनों में अंतर क्या है? सारे विश्वविद्यालय में, सारे शास्त्रों में, सब जगह पर कहा फोकस ऑफ माइंड इज कॉन्सेंट्रेशन, मन लगाइए। सिर्फ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम सत्य है, सदा शिव है, जो ज्ञान का सागर है, वो आकर के ऐसा ज्ञान देता है जो बुद्धि का ज्ञान है, जो दुनिया में आज तक नहीं पढ़ाया है। मन लगाओ, समझ बुद्धि के अंदर है। अगर एक माता मंदिर में जाती है, भगवान से क्या मांगते, भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो। बुद्धि के अंदर समझ है, जो हमने सुना, जो पढ़ा, समझ कहां है? तब कहते समझदार व्यक्ति। जैसा एक छोटा बच्चा स्कूल में जाता है, 6 सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग विषय होते हैं, 1 साल पढ़ता है, 1 साल के बाद प्रश्न पूछा, जो प्रश्न पूछेंगे उसी का जवाब लिखता है। हम कहते बहुत समझदार है, ब्रिलियंट है, बुद्धिवान है। हम भी रोज मुरली पढ़ते हैं कितने सालों से, लेकिन आप पूछो हमारी बुद्धि में ये ज्ञान का खजाना कितना जमा है। अपने आप को एक स्कूल के बच्चों को कंपेयर करो, क्योंकि ये भी एक रूहानी स्कूल है। पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे राजा, कहा ऐसे नहीं, पढ़ेंगे सुनेंगे तो बनेंगे, सुनने से नहीं। तो अगर पढ़ाई बूंद भी बहुत नहीं चाहिए, तो अगर कोई भी एक महावाक्य जो हम समझते आज मुझे आज ये करना चाहिए, यही आज ही मुझे धारण करना चाहिए, आज ही मुझे आचरण में लाना चाहिए। बाबा ने तो बहुत सारी बातें बताया, लेकिन एक ले लो अपनी योग्यता के अनुसार, अपने लक्ष्य के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, उसको नोट करो। अपने आप को बार बार पढ़ाते हो तो हम औरों को भी, फिर कोई मिला उनसे शेयर करो, उनको भी समझाओ, एक्सप्लेन करो, देखो इसका अर्थ क्या है, देह अभिमान क्या है, देही अभिमानी क्या है, देह अभिमान किसके कारण आता है? अगर देह का अभिमान हमारे बोल, आचरण, व्यवहार कैसे होता है? अगर देही अभिमानी है तो हमारे बोल, व्यवहार, आचरण कैसे होता है? अपने आप को भी समझाते हो, औरों को भी समझाते हो, जब कोई भी मिला डिस्कशन करते हो, ये करने से बुद्धि के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। उसको कहा संस्कार बनाते हम। ये संस्कारी अनेक जन्मों में काम में आता है। तब बाबा कहते हैं ज्ञान के अविनाशी संस्कार बनाओ। अपने आप सुनने से नहीं होगा। तो ये करते हो तो क्या होता है हमारे जीवन में, अपने आप उमंग उत्साह नहीं, आलस्य है, अलबेलापन है, बहुत कुछ है। तो मुरली सुनते ही, और वो भी संगठन में बैठकर, अगर इधर आके बैठ के सुनते हो क्लास में जाकर, एक दूसरों को देखकर भी उमंग उत्साह आता है, एक बूस्ट है ये मुरली, सिर्फ ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर ही रोज अलग अलग टॉपिक्स पर ज्ञान के पॉइंट्स मिलते हैं। एक ही कथा नहीं है, एक ही ज्ञान नहीं है। अगर आप रोज देखेंगे, रोज मुरली में अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं, न्यू वही का वही नहीं है। अगर सारी मुरलियों से आप एक एक दिन एक एक बूंद भी ले लो, 30 दिन में 30 बूंद जमा कर सकते हो। इसको कहा ज्ञान का अविनाशी खजाना है, ये इम्पेरिशेबल वेल्थ है, ये कोई ले नहीं सकता है, चोर चुरा नहीं सकता है, ये मिटा नहीं सकता है, अविनाशी है। क्यों? कि देने वाला कौन? अविनाशी बाप, अविनाशी ज्ञान रतन देता है और उसका फल भी अविनाशी है, थोड़े समय के लिए नहीं है। तो अनेक जन्मों तक सुख शांति समृद्धि चाहते हो तो ऐसे ज्ञान के खजाने जमा करना है। अगर ज्ञान के खजाना है, उनके जीवन में सदा उमंग उत्साह है, सदा प्रसन्नता है। आप देखते होंगे विश्व के गोले पर श्री कृष्ण बैठा है, कैसे बैठा है, हाथ में क्या है? मुरली है और कुछ नहीं है, कोई अस्त्र नहीं है। तो वही बाबा भी एक सैंपल दिखाया, बाबा भी चाहता है मेरे बच्चे भी ऐसे सारे विश्व के अंदर मुरलीधर बने, जिनके जीवन में सदा प्रसन्नता हो, उमंग उत्साह हो। वो अपने अपने होगा, कुछ करने से होगा। तो क्या करना चाहिए? ये जो मुरली रोज हम सुनते हैं, एक बूस्ट है, उमंग उत्साह में लाता है। आप मुरली सुनने के लिए आते से लगता है अरे कल सुना था, सुन करके क्या करेंगे, रोज सुनते हैं कुछ हो नहीं रहा है। अगर यहां आके बैठने के बाद, क्योंकि ये वातावरण संग एक दूसरों को देखकर और बाबा के अच्छे अच्छे पॉइंट्स नोट करते हो तो एक बूस्ट मिलता है, ये लिफ्ट है, अपने आप आपके अंदर एक दृढ़ता आता है, आपके अंदर एक वो शक्ति आती है मुझे कुछ करना चाहिए। और ये जो उमंग उत्साह है औरों को भी आप शेयर करते हो, तब का संगति संग दोषा, ऐसे व्यक्ति के साथ संग करो, अपना दोस्ती बनाओ, संबंध रखो, जो कभी मिले आपको तो ज्ञान के पॉइंट सुनाए, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा। नहीं तो हमारे मन में और कुछ चल रहा था, कोई मिला उसको देखते ही उसने मुझे ऐसे बाबा के एक रतन दिया तो उमंग उत्साह में आते हैं। हमने शुरू में देखा जब मधुबन में सब दादी आई थी, एक एक दिन एक एक दादियां मुरली सुनाती थी, क्लास भी एक दिन करते थे। एक दिन गुलजार दादी ने क्लास किया और गुलजार दादी ने कहा खुश रहो खुशी बांटो। हमने क्लास करके बाहर आया तो मैंने देखा दादी ने तो कुछ दिया नहीं, अगर कुछ दे दूं सामने कोई आया तो उसको दे दूं ना मैं। खुशी बांटो का कैसे बांटो, क्या बांटो? तो विचार आया तुरंत, हां सवेरे बाबा ने ज्ञान के खजाने दिए थे, ज्ञान के एक एक रतन दिया था। ये रतन अगर बुद्धि में है, सामने कोई आया अगर उसको सुनाते हो आप उसका चेहरा देख लो खुश हो जाता है, आपको भी लगता है कि मैंने भी कुछ सेवा किया है। ये खुशी बांटने का तरीका है। किसी को खाना दे दो शाम को फिर भूख लगेंगी, ये अविनाशी ज्ञान रतन दान करने की आदत चाहिए। अगर ये आदत हमारे अंदर है, आप भी सदा प्रसन्न खुश रहते हो, जागृत रहते हो, बेहोश नहीं रहते हो। अगर ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान एक संजीवनी बूटी है, संजीवनी बूटी सुंघाने से ही बेहोश होश में आता है। ये बार बार सवेरे से रात तक आप अपने आप को सुंघाते हो, रिमाइंड करते हो, समझाते हो अपने आप को तो होश में होते हैं। जो होश में होता है उसको कहा चीयरफुल, प्रसन्न, खुश, संतुष्ट। किधर भी वस्तु व्यक्ति वैभव के आकर्षण में नहीं आता है, नहीं तो ये आज की दुनिया माया का पंप कहा, हर प्रकार का आकर्षण है। हर प्रकार से खींचने वाला है। ऐसी चमत्कारी दुनिया है ये। इस चमत्कारी दुनिया में भी, ये माया का पांप में भी, अपने आप को बचाना चाहते हो तो रोज एक या दो नए नए पॉइंट्स नोट करना चाहिए। मुरली सुनते समय सारी मुरली लिखो, जरूरत नहीं है। और इतना हम याद भी नहीं रख सकते हैं, इतना आचरण में भी ला नहीं सकते हैं। अगर एक या दो पॉइंट रखते हो और उसके पर मंथन करते हो, औरों से शेयर करते हो, तो वही कोटों में कोई है। सुनते तो बहुत, बाबा के बच्चे तो बहुत है कहने के लिए। तब बाबा ने कहा, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। पुरुषार्थ क्या है? ब्राह्मण वो है जिसके बुद्धि में सवेरे से रात तक आज की मुरली के पॉइंट जागृत है। तब आप समझना, मैं जब बाबा ने कहा जो अव्यक्त मुरली में कहा, बाप के दिल में आप हो, आपके दिल में बाप है, तो दिल क्या? ये दिल में कौन सा दिल है? ये दिल में बाबा बैठेगा, इसमें तो खून है, खून चलता है। आजकल ट्रांसप्लांट भी करते हैं, ये हार्ट निकाल के दूसरा हार्ट लगाते हैं। दिल बुद्धि, दिल और दिमाग। दिल में आज जो मुरली सुनी बाबा का श्रीमत, अगर आपको याद है तो आप क्या कहते, किसी को मिलते ही आज बाबा ने ये कहा, तो आपके दिल में बाबा है। ऐसे सुपूत बच्चों के जो ऐसी सेवा करते, बार बार उनके मुख से आता है, आज बाबा ने ये कहा, आज शुभ बाबा ने ये कहा, तो बाबा के दिल में भी ऐसे सुपूत अनन्य बच्चे रहते हैं, उनको भी याद रहता है कैसे सेवा करते हैं। उसको कहा बार बार याद करना, दिन में एक दो को सुनाओ, पांच दस को सुनाओ, वो भाग्य आपके हाथ में है। कितनी हम सेवा करते हैं, तकदीर बनाने का यह समय है। सारे कल्प में जो हमको चाहिए, संगम एक ऐसा समय है, सारे कल्प के अंदर आप जो चाहते हो, तो अभी ऐसे कर्मों का बीज बोलो। ये बीज सारे कल्प, इसलिए कल्प वृक्ष कहा, सारे कल्प फल देता है। तो संगम पर अगर हमने बीज बोया नहीं, तो सारे कल्प के अंदर हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस चाहिए, कहां से आएगा? तो बीज बोने का ये समय है, इसलिए का ये हिम्मत देता है। लगता है कैसे करेंगे, कैसे होगा, बहुत सारे प्रश्न हैं, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन ज्ञान आपको मुरली के पॉइंट सुनते ही उमंग उत्साह आता है। नोट करते हो, औरों को बताते रहते हो, आप भी मंथन करते हो। क्यों? यहां एक व्यवस्था है, डिमांड एंड सप्लाई। अगर आप आदत डालते हो औरों को सुनाना है, देना है, तो अपने आप लेने की विधि बनती है कि मुझे आज ये याद रखना है, ये इनको सुनाना है। अभी क्या हो रहा, हमने सुना बस हो गया, दान करने की आदत नहीं है। हमने सोचा दान करना, खाना देना, पैसे देना और कुछ देना, ये तो स्थूल दान है। वो यहां इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये नहीं सुनाया जाता है। ज्ञान दान महादान कहा, ये अविनाशी दान है। अगर किसी को मिलते हो, आदत डालो सवेरे से रात तक, बाय फोन से कोई मिला, कोई सन्मुख मिला, आदत डालो उनको, मुझे कुछ ज्ञान के पॉइंट, संसार के बात, यहां ये हुआ, यहां वो हुआ। आजकल दुनिया में तो बहुत सारी बातें हैं, किसी से मिलो संसार के समाचार, उससे ना हमारा कमाई ना उनकी कमाई, ना हमारी सदगति ना उनकी सदगति। तब कहा कि अगर हमने ज्ञान सुनकर ऐसे बुद्धि के अंदर धारण किया है, जो कल हमारे से गुस्सा होता था, तो आज बुद्धि के अंदर ज्ञान है, वो हमको रोकता है। तब का सत्संग से सदगति परिवर्तन हुआ। अगर कल गुस्सा करते थे, आज भी कर रहे हो, मुरली सुनने के बाद भी, सुना लिखा, और व्यवस्था ऐसी है, व्यवहार ऐसा ही है, परिवर्तन नहीं है, तो सत्संग से सदगति नहीं हुई। सदगति और दुर्गति, ये ज्ञान सदगति करता है, परिवर्तन कराता है। तब का ज्ञान का प्रयोग, बहुत ज्ञान है, रोज बाबा एक एक बूंद देता है, एक एक ही ले लो। किस दिन खाने का, बाहर के खाने की व्यवस्था, इच्छा होती है, कोई सुंदरता है उसके आकर्षण होता है, कोई गलत समाचार देने की आदत है, गलत सोचने की आदत है, अगर एक एक बूंद एक एक जय, मुझे इनको देखकर एक गलत विचार क्यों आ रहा है, हां उन्होंने गलत किया लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे बाबा ने क्या कहा। अपने आप को पढ़ाते हो, उनको परिवर्तन करने नहीं जाते हो, अपना स्वयं को परिवर्तन, मुझे चेंज करना, मेरी दृष्टिकोण चेंज करना है, उसको वो चेंज करेगा, औरों को चेंज करने का अधिकार हमारे पास अभी नहीं है, स्वयं के ऊपर स्वयं का अधिकार। इनको देखकर ये विचार आता है, ये नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए, इसको बाबा ने कहा शुभ भावना, शुभ कामना, इच्छाएं। हमने इनको इतना मदद किया, इन्होंने ओम शांति भी नहीं किया, माना हम औरों से मदद करने के बाद कुछ चाहते हैं, ये इच्छा, ये कामना, शुभ भावना, शुभ कामना हमने दिया, हमने मदद किया, शुभ बाबा के बच्चे समझकर, उसका रिटर्न मिलना चाहिए मुझको, नहीं, ये कामना हो गया। नहीं तो हम मदद बहुत कुछ करते हैं लेकिन इच्छा रखते हैं, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मुझे इनके द्वारा सहयोग मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला तो व्यर्थ विकल्प चलता है। तो परिवर्तन क्या है, एक ही दिन में सब कुछ परिवर्तन नहीं होता है, बहुत समय का अभ्यास चाहिए, बहुत जन्मों के इतना कठोर संस्कार बने हैं, सिर्फ मुरली सुनने से, बाबा को याद करने से अपने आप मिटेगा नहीं। इसलिए कहा कि क्या चाहिए हमारे अंदर, वो दृढ़ता, कहा बाबा कहता दृढ़ संकल्प चाहिए, दृढ़ता से ही सफलता है। दृढ़ता क्या, वो कैसे आएंगे, कहां मिलेंगे, वो हिम्मत कहां से आएंगे, वो हिम्मत आते हैं, ये बूस्ट मुरली का आधार है, और ये ईश्वरीय ज्ञान है, कोई मनुष्य का कोई किधर से आया हुआ नहीं है, उसके अंदर इतनी शक्ति है, वो हमारे अंदर हिम्मत बढ़ाता है। तब का हिम्मत का कदम रखते हैं, उदाहरण देख लो, हमारे सामने बहुत उदाहरण है, बताने जाओ तो बहुत कुछ। हम देखो, जब ये डायमंड हॉल बन रहा था तो ब्रह्मा कुमार इसके पास, दादी के पास कोई इतना धन नहीं था, तो भी देखा दादी ने सभी सेंटर वालों को कहा, रोज स्टूडेंट को बोलो एक एक रुपया डालो, बूंद 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 करके 18 महीने के अंदर इतना बड़ा डायमंड हॉल बन गया। आज इसका उपयोग किसको मिल रहा है, कौन उपयोग ले रहा है, ये हिम्मत। उस समय ऐसी ताकत नहीं थी ऐसा बड़ा बड़ा बनावे, इतने आएंगे लोग, बाबा के बच्चे इतने आएंगे, कैसे करेंगे, तो हिम्मत। तब का अगर हिम्मत करते हो, ऐसे एक बताता हूं, अब भी एक साल पहले एक सेंटर में एक प्रोग्राम था, एक बहन जी आई और उन्होंने कहा भाई जी हमारे सेंटर में आना चाहिए। हमने कहा आपका सेंटर बहुत दूर है, कैसे जाएंगे। उसने एक भाई को बोला आप इनको लेके आइए, लेके गई और उनका सेंटर आधा बना हुआ था, एक कॉन्ट्रैक्टर को उन्होंने पैसे दिया, 2 साल तक आया ही नहीं, आधा बना के चला गया। फिर उन्होंने से कहा 2 साल हो गया, दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया और उनको कहा आप ये काम कंप्लीट करो। उन्होंने कहा मुझे 2 लाख रुपया देना पड़ेगा, अब मैं काम शुरू करता हूं। जब उसको पता चला, वो भी आया, नहीं मुझे 2 लाख रुपया देंगे तब मैं पूरा करूंगा, नहीं तो उसको भी करना नहीं दूंगा। अब बहन जी ने क्या किया, तो बाबा को सुनाएंगे। बाबा ने कहा सच्चे दिल पर साहेब राजी है, रोज अमृत वेले बैठकर बाबा आपके बच्चे कैसे बैठेंगे, कैसे होगा। अचानक कोरियर से पैसे नहीं आते, कोरियर से सामान आता है, कोरियर वालों ने फोन किया बहन जी आपका सामान आया लेके जाओ। तो गई, लिफाफा लिया, देखा खोला तो 2 लाख रुपया थे। हमने कहा बहन जी किसने भेजा? पता नहीं, न टेलीफोन नंबर है, न नाम है भेजने वाले का, किसने भेजा। लेकिन मुझे एक विश्वास आता है, एक भाई आता था, अभी दो चार साल से आया नहीं है, वो कहां गया पता ही नहीं है, शायद उसी ने भेजा है। मैंने कहा आप उनको ढूंढो, फोन करो। कहते उनका नंबर नहीं, वो कहां है या नहीं है पता, लेकिन मुझे उस देखते याद आता है उसी भाई ने भेजा है। तब कहा आप जानते होंगे बैगरी पार्ट में भी 12 बजे तक 400 बच्चे थे, कुछ भी नहीं था। बाबा ने कहा ठहरो, पोस्टमैन आने दो। एक माता ने 2000 रुपए भेजे लिफाफे के अंदर, तो कौन मदद करता? भारत माता क्यों कहा है? ऐसे नहीं, ये यज्ञ की सेवा करने वाले, संभाल करने वाले कौन? भगवान को उन्होंने ऐसे समय पर मदद किया है। तब भारत माता का वंदे मातरम अपने आप कहने का नहीं है, उन माताओं ने ऐसी सेवा किया, ऐसे कर्म किया, उसका गायन है, उसका पूजन है, कुछ कर्म। तभी बाबा कहता है हम बच्चों को भी गायन योग्य बनाता है संगम पर, और भविष्य में पूजनीय बनेंगे। लेकिन सिखाता है कि बच्चे दान करना सीखो। क्या दान? ज्ञान दान सबसे श्रेष्ठ दान है, और ये ज्ञान दान अविनाशी है, और पुराना पुराना नहीं, रोज मुरली से नए नए पॉइंट निकालो, सुनते सुनते मिल जाता है, अंडरलाइन करो उसी समय, नोट करो, अपने आप को पढ़ाओ, उसको विचार करके मंथन करके मक्खन निकालो। देखो दही के अंदर मक्खन होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, दोनों हाथों से मस लो, आधा घंटे के बाद मक्खन बाहर आता है। सिर्फ मुरली सुनकर सुनाने से नहीं, ये तो पोस्टमैन का काम है, सुना डिलीवरी किया नहीं, मंथन करो और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करो औरों को, उनको भी समझ में आए। इसलिए शुरू में कहते थे मम्मा की मुरली बहुत अच्छी समझ में आती है, बाबा फटाफट सुनाता था, समझ में नहीं आता था, मम्मा बाजू में बैठकर नोट कर उसके बाद एक्सप्लेन करती थी। तब कहते थे मम्मा की मुरली समझ में आती है, एक एक मुरली के गहराई में जाती थी, अच्छी तरह से व्यवहारिक दृष्टि से एक्सप्लेन करती थी। इसको कहा ज्ञान की पालना, खाने की खिलाने की पालना अलग, ज्ञान की पालना ये अविनाशी पालना है। ये मनुष्य को, साधारण मनुष्य को, कौड़े तुल मनुष्य को हीरे तुल बनाता है, पूजनीय बनाता है। लेकिन वो अपने आप नहीं, तो वो हमारे अंदर दृढ़ता चाहिए। उसको कहा निश्चय चाहिए। निश्चय कैसे होगा? सुनने से, रोज कुछ करने से निश्चय होता है। जैसे देखो उस बहन जी को निश्चय हुआ, बाबा को सुनाया था और बाबा ने किया, बाबा ने बनाया। तो आज भी अगर हम दिल से, बाबा ने कहा सवेरे उठकर बाबा से रूरियान करते हो, अपनी दिल की बात बताते हो, आज भी जहां जरूरत है, ऐसे नहीं सभी को हम गलत काम करते रहे और बाबा से मांगते रहे भक्ति मार्ग में, बाबा मेरा ये करो, बाबा ये करो, नहीं, जो पुरुषार्थ करते हैं, सच्चे दिल से अपना पोता मेल बाबा को बताते हैं, तब का सच्चे दिल पर साहेब राजी है, दिखाने के लिए नहीं, जो जरूरी है। तब आपको उदाहरण बताया, उस समय देख लो जरूरत थी, 12 बजे तक खाना नहीं बना, कुछ भी नहीं, 400 बच्चे हैं, और उस समय पोस्ट ऑफिस से लेटर आता है, बाबा कहता है कि आने दो, लेटर आएगा, पोस्टमैन आने दो, पता है उनको, उसको विश्वास है, ब्रह्मा बाबा को भी पूरा निश्चय है, हाँ आएगा, ऐसे बाबा के बच्चे हैं। उस बहन जी को भी पता था, इसलिए उदाहरण बताया, दादी जी को भी पता था, संकल्प था, ये बाबा के बच्चे अंत में इतने आएंगे, उनको शांति से बैठ करके बाबा इधर सेवा करेगा। अव्यक्त बाप दादा गुलजार दादी के द्वारा आज भी देखो कितना शांति से बैठे, नहीं तो बैठ ही नहीं सकते थे, भीड़ होती थी। आज इस डायमंड हॉल में 20,000, अब इसके बाद और एक लास्ट टर्न है, देखना 25,000 होंगे, तो भी कोई आवाज नहीं, भागा दौड़ी नहीं है, शांति से बैठ के। ऐसी व्यवस्था कैसे हुई? ये हिम्मत है, ये अपने आप नहीं होता है, विश्वास है। हिम्मत रखते हो, पुरुषार्थ करते हो, फल मिलता है। वो फल को देखकर आपके अंदर वो उमंग उत्साह आता है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करे तो ऐसा होता है। लेकिन वो पुरुषार्थ आध्यात्मिक होना चाहिए, स्थूल नहीं। स्थूल प्राप्ति के लिए नहीं, वो भक्ति में किया, आध्यात्मिक प्राप्ति मनुष्य आत्माओं को, हम आत्माओं को चढ़ती कला की ओर ले जाना है, खास काम और क्रोध को जीतना है, जो हमारे पतन का कारण है, उसको दे अभिमान कहा। जो हमको सब कुछ मिलने के बाद भी अगर हमारे जीवन में उन्नति प्रोग्रेस नहीं है, बहुत कुछ है लेकिन परिवर्तन नहीं है अभी भी आचरण में, वो सब कुछ प्राप्ति हो करके भी उसका सुख ले दे सकते हैं। नहीं तो बहुत बच्चों के साथ बाबा ने बहुत कुछ दिया, देखने में स्थूल रूप से समृद्ध है, लेकिन परिवर्तन चाहिए, आचरण व्यवहार। उसको बाबा ने आज बार बार कहा, देही अभिमानी, और दे अभिमान, इसके गहराई में जाओ, सोचो दे अभिमान क्या चीज है। सुनने में सहज लगता है, अगर इसके गहराई में जाओ, मंथन करो, तो पता चलता है क्या दे अभिमान क्या चीज है, ये उसके कारण क्या हो रहा है। सब कुछ होते हुए भी संतुष्ट नहीं है, मधुरता नहीं है, वो नम्रता नहीं है, वो निर्माणता नहीं है, वो कब आएंगी? अभी समय, अंतिम समय आ गया है, जो भी मिला जितना भी है उसमें संतुष्ट, कि पता है मुझको मेरे पुरुषार्थ के अंदर मेरी कमाई इतनी है, मुझे इतना चाहिए, वो मेरी कमाई नहीं है, मेरा पुरुषार्थ इतना नहीं है, संतुष्टता में भी नंबरवार है। तो वो देखता है, अपने आप को देखता है, नहीं तो हम एक दूसरों को कंपेयर करते हैं, उसके पास आया है। उसमें बाबा ने कहा रीस नहीं, रेस करो, उनके पास है, उनके पास ये है, रीस नहीं करो, क्या करो, वो उन्होंने क्या पुरुषार्थ किया, इसलिए कहा रिगार्ड रिस्पेक्ट दे दो, कहा औरों को भी रिगार्ड दे दो, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, इनका पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ को सैल्यूट, रिस्पेक्ट किसके लिए, स्थूल चीजों के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, वो दिखाने के लिए रिस्पेक्ट रिगार्ड है, वो टेम्पररी है, कल वो नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये अविनाशी स्थिति है, तब बाबा कहते ऐसी स्थिति बनाओ जो सारे कल्प यादगार बनेगा, तो संगम पर ऐसी, तो उनको रिस्पेक्ट दे दो, उनका पुरुषार्थ देखो क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो तब का ऐसे व्यक्ति के संग में रहो, जो उनके संग में रहते हो तो आपको भी लिफ्ट मिलता है। आप पूछेंगे हमको भी शुरू में कॉलेज पढ़ते समय 4 साल तक हमको घर और कॉलेज के रास्ते के अलावा कुछ पता ही नहीं है, कोई व्यक्ति कोई दोस्त नहीं कुछ नहीं, क्यों, जो सेंटर का एक मुख्य प्रोफेसर था, सेंटर चलाता था, उसी का संग, कॉलेज छूटा वो अपने घर लेके जाता था, खाना बना के खाया, उधर सो जाओ, शाम को क्लास किया, और दुनिया का किसी का संग नहीं है। नहीं तो यहां तक पहुंचने का, नहीं तो हमारे साथ कम से कम 100 बच्चे थे 3 कॉलेज के, किसने पहुंचाया, संग। और उस समय जरूरत है, जो चारों तरफ आकर्षण करता है, खींचता है और बेलगाम है, उस समय मां बाप का किसी का लगाम नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति के समय पर अगर ऐसा संग मिलता है, मनुष्य कहां से कहां, इसको कहा पालना। तो आज भी हमारे जीवन में हमने मुरली सुनी, अगर संग नहीं है, कोई इधर उधर की बातें करता है तो हमारा दोस्त नहीं है, उससे हमारी उन्नति नहीं है, उससे हमारी चढ़ती कला नहीं है, तो संग ढूंढना पड़ता है। तब का कुसंग और सत्संग तारे। तो संसार में आज भी बहुत है, अभी ट्रेन में जाते हो, आपस में मिलते हो, अपने आप से पूछो, आज भी यहां बैठे हुए आप अपने आप से पूछो, सवेरे से रात तक बाबा व्यक्त बाप दादा ने मुरली सुनी आप सबने, उनमें से कोई भी एक पॉइंट दो पॉइंट आपने किसी से शेयर किया? सच्चे दिल से पूछ लो, हम कहां आए, आए किसके लिए? कहते बाबा मिलन के लिए आए। तो जिससे मिलकर जिन्होंने जो दिया वो हमने अपने बैठ करके मनन चिंतन किया, औरों को भी सुनाया, डिस्कशन किया, आज मुरली सुनी, आज की मुरली के पॉइंट सुना, लिखा, मंथन, समय है। हाँ, सेंटर में बहुत बिजी है, बहुत सेवा करना पड़ता है, नौकरी में जाना पड़ता, मानता हूं, तो बाबा हरेक बच्चों को चांस देता है, इसलिए मधुबन में ऐसी व्यवस्था है। अही आप देखो, कुंभ मेले में जाओ, कितनी भीड़, वहां खड़े भी नहीं हो सकते आप। कई मंदिर में जाओ, आज के दुनिया में किसी भी मंदिर में जाओ, एक सेकंड भी आपको खड़ा करना नहीं देता है। जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, भीड़, कितना घंटा खड़ा होना पड़ता है। तब बाबा ने कहा, मेरे ठाकुर हो, मेरे राजा बच्चे हो, आराम से बिठाता है, तीन टाइम खिलाता है, ऐसे नहीं सिर्फ दाल रोटी खिलाता है, हर प्रकार से बच्चों की इच्छा के अनुसार खिलाता भी है, बिठाता भी है, और कोई गड़बड़ आवाज नहीं, दुनिया का कोई वाइब्रेशन नहीं इधर। इसको मेंटेन करना चाहिए, नहीं तो यहां आने के बाद भी 2400 घंटा अगर मोबाइल में देखते रहो तो यहां आके क्या किया? उसके बदले अपने घर में, अपने गांव में रहते थे, वहां आके क्या किया हमने? अगर बच्चा स्कूल में जाके पढ़ाई छोड़कर तो मोबाइल में देखता रहे तो क्या होगा? तब कहेंगे हमारे तकदीर ऐसा क्या है, हमारे जीवन में विघ्न क्या, ये परिस्थिति क्यों, ये बीमारी क्यों? तब आज बाबा ने कहा, योग बल। कर्मातीत बनना चाहते हो तो योग बल जमा करो, उसके लिए व्यवस्था भी देता है, इसे अपने आप नहीं कहता है। हाँ, सब कुछ छोड़ो भी नहीं कहा, संसार में बिजनेस करो, नौकरी करो, घर संभालो, साल में एक दफा बुलाते अपने घर में, हर एक सेंटर में भी भट्टी भी रखते हैं, मधुबन में भी माताओं के, कुमारों के, भाइयों की, अदर कुमार सबकी भट्टी भी रखते हैं, बाबा यहां भी बुलाता है और बैठकर शांति से बैठकर बैठने की व्यवस्था भी करता है, कोई मेहनत नहीं है, किसी प्रकार की परेशानी है, कोई दबाव है? साल में एक दफा तो बुलाता है हर एक को, उसके अलावा भट्टी के लिए भी बुलाता है, उसके अलावा सेंटर इतने बड़े बड़े बने हैं वहां भी तपस्या करने के लिए समय मिलता है। जो समझते सारा दिन बिजी है, तो भगवान के घर में चांस देता है। ये कहा, ये टीचर आके ऐसी व्यवस्था करता है, ऐसा समय देता है, ऐसा संग देता है। देखो, यहां दुनिया के कोई किसी का संग नहीं है, बाहर वालों का संग है, कोई तंबाकू खाता है, शराब पीता है, बीड़ी पीता है, ऐसा कोई है? कोई दुनिया के इधर उधर की बातें है? आज बाहर जाओ, ट्रेन में जाओ, बस पर जाओ, हर एक के अलग अलग व्यवहार है। यहां देखो, सफेद कपड़े सभी, सबके बुद्धि में एक साथ बैठ करके ऐसा ज्ञान सुनते हैं, ऐसे मुरली सुनते हैं, ऐसे नाम या शांति वन। अगर यहां आकर के आप भी सारा दिन में मोबाइल में देखते हो, दुनिया की बात सुनते रहते हो, तो यहां आके क्या किया? वो अंत में पता चलता है, जो बाबा ने आज कहा, योग बल, ज्ञान बल। कम से कम यहां आने के बाद किसी को कोई खाना बनाने का, कपड़े धोने का, किसी का कोई समस्या नहीं है, शांत, सब प्रकार का प्रबंध, समय पर सब कुछ मिल रहा है, किसी प्रकार की किसी को कोई कष्ट, रहने की व्यवस्था, खाने की, हर प्रकार का प्रबंध है, फिर भी अगर हमने पुरुषार्थ नहीं किया तो अंत में पश्चाताप होता है। उसको बाबा ने कहा कर्म भोग भोगना पड़ता है, तब अंत में पश्चाताप होता है कि हमने क्या किया। तब कहा वो इट इज टू लेट, उस समय आप क्या कर सकते हो। तो इसको कहा सेल्फ रियलाइजेशन। इसलिए कहा अनलेस यू रियलाइज देयर इज नो चेंज, महसूस करना पड़ता है। ये सत्संग, ये ज्ञान, ये मुरली, ये अव्यक्त बाप दादा के मिलन में हर साल बाबा बुलाता है, रियलाइज करता, शांत होके बैठो और सुनो। जैसे हमने देखा एक बहुत बड़ा संत था स्वामी नारायण का, और बनारस में पढ़ता था, बहुत बड़े 70 इयर्स था, बहुत बड़ा गुरु था, पीएचडी किया था। एक दिन हमको मिला तो हमको कहने लगा कि आप लोग श्री कृष्ण को नहीं मानते हो, शिव भगवान को, शिव को ही भगवान मानते हो। स्वामी जी हम तो आपके सामने बहुत छोटे हैं, आप बहुत बड़े पंडित हो, आप बड़े पीएचडी किए आपने, आप विद्वान हो, आप हमको बताओ कि यहां गुलजार दादी के तन में शिव बाबा आके यहां मुरली सुनाता है, हम मानते हैं ये ठीक नहीं है, ये गलत है, हम मानते हैं, आप बताओ। क्योंकि इंग्लिश में कहते हैं सत्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, यू मस्ट सी एंड यू मस्ट लिसन एट द सेम टाइम। आपने बहुत कुछ पढ़ा सुना, देखा नहीं है, आप आओ इधर ही डायमंड हॉल में, इधर ही बिठाया, आप आओ बैठो। कहते मैं आऊंगा, खास कार करके आया गुजरात से, आके आगे आगे बैठा। और बैठने के बाद जब मुरली सुनी गुलजार दादी के तन में, कैसे बाबा आया, कैसे डायमंड हॉल में इतने बैठे, आवाज नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंट, इस संघ का, इस संगठन का वाइब्रेशन से। और बाबा कैसे आया, कैसे ज्ञान सुना, सुनने के बाद मुझे बताता है मैंने अपना जीवन गवाया, आज समझ में आया, आज समझ में आया कि कैसे भगवान आकर के चुपचाप पालना करता है बच्चों की। तब लोग दुनिया में कहते हैं भगवान मुझे खिलाता है, आज यहां आके पता चला कि भगवान कैसे पढ़ाता है। फिर उनकी स्वामीनारायण की सिल्वर जुबली थी गुजरात में, वहां हमको खास बुलाया और स्टेज पर बुला करके सम्मान किया। तो वो आज मनुष्य देखना चाहता है, कोई गलत नहीं उनके अंदर था। तो ऐसे वातावरण इधर डायमंड हॉल ये बनाए दादी ने, इतनी मेहनत करके आप सबके सहयोग से बनाया, बूंद बूंद से। तो यहां आने के बाद भी उसकी रख रखाव संभाल करनी चाहिए। अगर यहां आकर के दुनिया की बात, फोन लेकर के बिजनेस की बात करते रहो तो हमने इस व्यवस्था को बिगाड़ा कि बनाया। यहां आके दुनिया की बातें करते रहे हम, ये कौन सा स्थान है। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं पढ़ाई की बात करेंगे ना, कि घर की फिल्मी की पिक्चर की बात करेंगे, उसको कहेंगे पढ़ाई स्थान, पढ़ने का स्थान है, नहीं है ना। आप सोचो हर एक की जिम्मेवारी है, ऐसे स्थान पर हम आए हैं, यहां ज्ञान और ध्यान के अलावा, ज्ञान और योग के अलावा कोई व्यवहार, बिजनेस इधर उधर की वो वहां करो। इधर आने के बाद दो दिन कहते लोग कहते मौन रखो, आज के दुनिया में मौन मोबाइल का रखो, दो दिन मोबाइल को छुट्टी रखो, यूज नहीं करना है। ये बंदर है, मनुष्य के हाथ में बंदर है तो वो शांति से बैठने देगा, ज्ञान कहां रहेगा, कहां धारण होगा। सोच लो जिसके हाथ में 2400 घंटा मोबाइल है तो उनके बुद्धि में ज्ञान बैठेगा, साक्षी होकर सोच लो। तो सत्संग या मधुबन आकर के बाबा मिलन में आकर क्या किया हमने, तब का कोटों में कोई, तब का पाची पांडव, उनके साथ कौन था और उनके साथ कौन था। तो ये समझ है, तो बाबा यहां समझदार बनाता है। इसलिए कहा कि क्या चाहिए, हिम्मत चाहिए। वो हिम्मत ऐसे क्लासेस मिलते हैं, मुरली मिलती है बाबा की, पढ़ो चिंतन करो, मंथन करो, आपस में लेन देन करो। ऐसी पढ़ाई सारे विश्व के अंदर और कहीं भी हमने देखा नहीं। किसी भी विश्वविद्यालय में जाओ तो ऐसे शिव बाबा परमधाम से के ऐसे पढ़ाई पढ़ाता है, ऐसी व्यवस्था आराम से शांति से बैठ के पढ़ाता है। तो इस पढ़ाई से ही इसको कहा ये सत्य का संग, सत्यम शिवम सुंदरम का, वो स्वयं आकर ये सत्य ज्ञान देता है, अविनाशी ज्ञान है। इसलिए सत्य ज्ञान से सद्गति होती है। अगर अपने जीवन में सद्गति चाहते हो, कुछ परिवर्तन करना चाहते हो, तो कुछ करना जरूरी है। बहुत कुछ नहीं, बाबा मेहनत करना नहीं सिखाता है, सिर्फ रोज एक बूंद। और अभी 7 बज गए, 7 से 7:30 आधा घंटा योग में बैठेंगे। तो योग में बैठे बहुत लोगों का आंखें बंद करके ठंडी हवा है, बहुत अच्छा, अच्छी नींद भी आती है। ये कमाई का समय है ना। तो कमा तब ब्रह्मा कुमार इसके अंदर एक ही राजयोग है, दो नहीं है। तो वो राजयोग यहां बैठ करके आधा घंटा अपने आप को देख लो। बाबा ने अभी 2-4 दिन पहले मुरली सुनाए थे कि योग में बैठकर और कोई विचार करे, बुद्धि भटकती है। क्यों भटक रही है? अपने आप नहीं, हमने बुद्धि को काम नहीं दिया। तो यहां मन बुद्धि को यूज करना है। तो आराम से बैठो। तो बाबा ने व्यवस्था दिया है ब्रह्मा कुमार इसके अंदर, कहते हैं मेडिटेशन। कहते हैं मेडिटेशन क्या? एक्टिवेट योर कॉन्सियसनेस एंड कनेक्ट विद द सुप्रीम कॉन्सियसनेस। अपने को जागृत करो। आप पूछेंगे क्या हम सोए हैं? क्या जागे हुए? आंखें खुली है। हाँ, आंखें खुली होते हुए भी शरीर यहां है, दिल और कहीं लगा हुआ, और कोई विचार चल रहा है। तो यहां होते हुए नहीं हो, फिजिकली यू आर हियर, मेंटली यू आर हियर, दिल बुद्धि और कहीं है, क्या सुना पता ही नहीं है। तो इसके लिए यहां बैठने के बाद, तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मेडिटेशन है, अपने को आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन और कुछ नहीं, दो ही चीज। इसको कहा लाइन क्लियर, कनेक्शन क्लियर। तो यहां से वहां लाइन क्लियर होना चाहिए तो सही नंबर डालना चाहिए। अगर गलत नंबर डालो तो लाइन कनेक्ट नहीं होता है। तो यहां नंबर है आत्मचिंतन। जब बैठते हो आंखें खोलकर बाबा का इतना बड़ा चित्र एक जगह देखते रहो, आंखें बंद करते सोते समय स्थित प्रज्ञ क्या, इधर देखा उधर देखा, मोबाइल लेके बैठो तो योग लगेगा? कम से कम डायमंड हॉल में आते हो कोई चप्पल पहन के आते हैं? नहीं, चप्पल तो बाहर रखते हो। ऐसे अंदर घुसते ही मोबाइल स्विच ऑफ, उसका काम यहां नहीं है। अगर काम करना है तो यहां आके बैठो नहीं, क्योंकि औरों को डिस्टर्ब करता है ना। हम योग कर रहे हैं ना, औरों को करना दे रहे, रिंग बजता है, बंद करना आता नहीं है। तो इसलिए वहां से आते समय कमरे में रखो, ले आए वो स्विच ऑफ। तो आराम से बैठो, अपने आप से बात करो, मैं कौन? मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। बुद्धि ज्ञान देती है, समझ देती है, प्रश्न करो जवाब। ये मन बुद्धि को यूज करने का तरीका, ज्ञान का प्रयोग योग का। फिर पूछो मेरा रूप, फिर पूछो मेरे गुण। हाँ, दैवी गुण थे, आज नहीं है, ये दैवी गुण चाहिए, सातों गुण, एक एक गुण याद करो। फिर मैं क्या कर रहा हूं इधर बैठकर? ये खाना खाने का समझदान नहीं है, हम शिव बाबा को याद करने बैठे। शिव बाबा कहां है? परम धाम में। क्या है उसके पास? सर्वशक्तिवान का, ऑल माइटी। कौन सी सर्वशक्तियां है? पवित्रता का सागर है, शांति का सागर, वो तो है। तो मुझे उसके जैसे बनना है। अब एक एक शक्ति ले लो। बाबा आप तो पवित्रता के सागर हो, आपने कहा मेरे जैसे बनो तो मेरे घर में आ सकते हो। मैं कैसे किस में पवित्र बनूं? अब इसको खोलो, मुझे किस में पवित्र बनना है? पवित्रता पहले गृहस्थ आश्रम का, घर से शुरू। घर साफ स्वच्छ, इसके घर में मक्खी मच्छर हो, यहां से संस्कार डालना है। स्वच्छता, फिजिकल एंड मेंटल क्लीननेस इज प्यूरिटी। तो शरीर को पसीना आता है, 2 दफा स्नान करो, शरीर स्वच्छ। अन्न किसी ने कुछ दिया, कभी भी कुछ भी खाया नहीं, जैसा अन्न वैसा शरीर बनता है। शरीर में बीमारियों का कारण आप जानते हो, कोरोना के समय पर बार बार सैनिटाइज करो, बार बार हाथ धो लो का, क्यों कुछ लगा ही नहीं है। इतने सूक्ष्म जर्म्स है। आत्मा के भी दो हाथ है, एक मन और बुद्धि, इन दोनों के अंदर ज्ञान का मंथन चिंतन चलता है। ये दोनों स्वच्छ है, स्वच्छ मन बुद्धि सीधा लाइन क्लियर सीधा जाता है। और परमधाम में एक एक शक्ति के ऊपर कम से कम 15 मिनट आप मंथन करते हो। हाँ शिव बाबा, आप पवित्रता के सागर हो, मुझे आपके जैसे बनना है, मुझे किसमें पवित्र बनना है, इस बात में कैसे बनो, इस बात में कैसे बनो। तो पवित्रता के ऊपर 15 मिनट आप बाबा से बात करते हो तो पवित्रता की अग्नि जलाए, ये अग्नि अपवित्रता को भस्म करती है। सिर्फ महिमा नहीं, बाबा आप पवित्रता के सागर हो, आप शांति के सागर हो, हाँ आप हो, मुझे बनना है। ऐसे आधा घंटा बैठ के योग कर सकते हो कि नींद आएगी? हाँ, फिर बीच में आते जाते हो, एक आता है एक जाता है तो दूसरों को भी डिस्टर्ब होता है, इसलिए शांति से बैठकर अभी आधा घंटा योग करेंगे। ओम शांति।
ठिकाना